आर्य अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड एली की कब्र पर आया हुआ था। वो वहां पर बैठकर अपने दिल की बातें कर रहा था। वहां काफी देर बैठे रहने के बाद वो वहां से उठा और उसी घर में आया जहां कभी एली रहती थी। आर्य ने घर का दरवाजा खोला तो सारी चीजें वैसे की वैसे रखी हुई थीं, जैसे किसी वक्त में एली रखती थी। सामने की दीवार पर एली और आर्य की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एली ने आर्य के कंधे पर सिर रखा था। उसे देखने के बाद आर्य के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कुराहट थी। आई मिस यू सो मच, वो उसे देखकर बोला और आगे गया। घर ज्यादा बड़ा नहीं होने की वजह से लिविंग रूम में ही एक कोने में छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। उसके पास एक छोटा सा किचन बना था और सामने की तरफ एक बड़ा कमरा था। आर्य वहां से कमरे में गया और सामने रखी अलमारी को खोला। उसमें एली का सामान रखा हुआ था। सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, मेरी तरह इन्हें भी तुम्हारे आने का इंतजार है एली, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी ये उम्मीद टूटने वाली है, लेकिन फिर भी दिल में तुमसे फिर से मिलने की उम्मीद आज भी कायम है। आर्य ने अलमारी में रखे एली के सफ़ेद स्काफ को निकालकर अपने चारों तरफ लपेट लिया। वो उसे उसके पास होने का एहसास दे रहा था। उसके बाद वो किचन में आया और सामान निकालकर कुकिंग करने लगा। मुझे आज भी याद है मेरे आने पर तुम मेरे लिए पैनकेक्स बनाती थी। खुद से बातें करते हुए वो एली की तरह पैनकेक बना रहा था। वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे एली उसके पास बैठी हो। जानते हो एली, आज भी मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं सुधरी। डैड अपने साथ फिर से एक लड़की को घर ले आए और उससे शादी करना चाहते हैं। उस पर मेरे सो कॉल्ड सिबलिंग्स मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दादू की वजह से मुझे वहां जाना पड़ता है। तुम कहती थी ना, एक दिन मेरी फैमिली आपसी दुश्मनी भूलकर एक साथ प्यार से रहेगी, और मैं कहता था ऐसा कभी नहीं होने वाला। देख लो, हर बार की तरह तुम गलत प्रूव हुई और मैं सही, कहकर आर्य हंस पड़ा। उसने अपने लिए नाश्ता बनाया और बाहर रखी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगा। उस बड़े से घर से ज्यादा अपनापन और सुकून मुझे तुम्हारे घर पर महसूस होता है। सोच रहा हूँ यहीं तुम्हारे साथ आकर रहने लगूं, बस दादू को इसके लिए मनाना पड़ेगा। आर्य वहां बैठकर नाश्ता करते हुए खुद से बातें कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। आर्य वहीं पर बैठा था। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। आर्य को वहां देखकर उसने उसे सलाम किया और फिर कहा, आप यहां आ रहे थे तो पहले बता देते सर, बताने का मौका नहीं मिला। वैसे आपने मेरे घर को काफी अच्छे से रखा है पीटर अंकल। आज मैं यहाँ एक टीम भेजूंगा जो यहाँ का सामान मैनेज कर सके। मैं अब से यहीं रहूंगा, आर्य ने कहा। इतने छोटे घर में आप कैसे रहेंगे सर, पीटर ने हैरानी से पूछा। ये घर भले ही छोटा है पर यहाँ मेरी एली की यादें हैं। आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी, टीम कुछ देर में पहुंच जाएगी, आप संभाल लीजिएगा, पीटर ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्य उसे सारी बात समझाने के बाद वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। नील के डैड मिस्टर जिम वॉटसन ने उन दोनों को ब्रंच पर बुलाया था। नील और शिवी वहां पहुंचे, तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो दोनों वॉटसन मेंशन के आगे खड़े थे। अंदर जाने से पहले नील ने शिवी से कहा, मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूं, इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैं वापस उस टीन के डिब्बे जैसे घर में नहीं जाना चाहता। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, शिवी ने उसकी बात का जवाब दिया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले शिवी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसकी इस हरकत पर नील ने मुंह बनाया। वो दोनों एक साथ अंदर गए। शिवी की माँ नंदिनी उनके आने का इंतजार कर रही थी। वो लगभग 40 साल की उम्र की थी। उन्होंने महंगा ऑफिस सूट पहना था और बालों को कसकर पोनीटेल में बांध रखा था। जिम के काम में वो भी उनकी मदद करती थी। उनका रहन सहन और पहनावा काफी हद तक वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित था। शिवी उनसे काफी वक्त बाद मिल रही थी। उनको देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं नंदिनी भी उनके आने से खुश थी। उन दोनों को वहां देखते ही नंदिनी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी। शिवी को लगा कि वो उससे गले लगने के लिए बढ़ रही हैं, लेकिन जब नंदिनी ने आगे आकर नील को गले लगाया तो शिवी का चेहरा उतर गया। आई मिस्ड यू सो मच बेटा, आई होप शिवी ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा, नंदिनी उससे अलग होकर बोली। बिल्कुल नहीं मॉम, इनफैक्ट अब तो हम दोनों की काफी अच्छी बनने लगी है, है ना शिवी, नील ने शिवी की तरफ देखकर पूछा। जवाब में शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ कहते ही नंदिनी उसके पास आई और उसके गाल को सहलाकर बोली, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम अपना बिहेवियर बदल रही हो शिवी। मुझे पता चला कि कल तुम्हें एमबीए की डिग्री मिलने वाली है। आप आ रही हैं ना सेरेमनी में, शिवी ने एक्साइटेड होकर पूछा। आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे पहले पता होता तो मैं अपने प्लान्स कैंसिल कर देती। कल मुझे और जिम को मिले पूरे एक साल हो जाएंगे। हमने कल का दिन एक साथ बिताने का प्लान किया है। वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो, बचपन वाली बात थोड़ी ना है जो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करो और बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ। आई होप यू अंडरस्टैंड, नंदिनी ने अपनी तरफ से ना आने की सफाई दी और साथ ही शिवी को समझाया। हाँ माँ, मैं सब समझ रही हूँ और काफी अच्छे से, शिवी ने नम आंखों से जवाब दिया। उसकी आवाज़ भारी थी। नील समझ गया कि वो लगभग रोने ही वाली है। नील ने बात को संभालते हुए कहा,
मैंने तुम्हें बताया था ना शिवी, मैं कल के दिन फ्री हूँ, डोंट वरी, मैं सेरेमनी में जरूर आऊंगा। शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इस हरकत पर नंदिनी उसे डांटने ही वाली थी कि जिम वहां आ गए। तुम दोनों को यहां देखकर काफी खुशी हो रही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों ही लेट हो? कहीं यहां आने के लिए दोनों झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? जिम ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, नील और शिवी एक साथ बोले। उनके एक साथ जवाब देने पर जिम ने हंसकर कहा, लगता है अब सच में तुम दोनों की अच्छी बनने लगी है। नील और शिवी ने हंसकर उनकी बात पर हामी भरी। जहां नंदिनी बार बार शिवी के बजाय नील पर ध्यान दे रही थी, वहीं मिस्टर जिम भी नील के बजाय शिवी से ज्यादा बातें कर रहे थे। दोनों बेमन से वहां पर बैठकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। नील अपने डैड की तरफ तो शिवी अपनी मॉम की तरफ उम्मीद से देख रही थी कि वो उनसे बात करेंगे। शिवी बेटा, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारी एमबीए की डिग्री मिलने वाली है। आई विश मैं इस सेरेमनी को अटेंड कर पाता। जिम ने अपनी तरफ से शिवी को सॉरी बोला। नील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने मन में कहा, डिग्री तो मुझे भी मिली थी, पर डैड ने इस बारे में बात तक नहीं की। कंग्रेचुलेट करना तो दूर की बात है, बाहर में क्या अच्छा बिहेवियर, मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। जिम के इस बर्ताव पर नील को काफी गुस्सा आया। उसने शिवी की तरफ देखा, जो सब सही होने का दिखावा कर रही थी। नील ने अपने पास पड़ा जूस लिया और उसे शिवी के मुंह पर फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर शिवी सहित नंदिनी और जिम भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। नील, ये क्या बदतमीजी है? जिम उस पर गुस्से में चिल्लाए। इससे गलती से हो गया होगा, आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। आपने देखा ना, दोनों बच्चे आपस में काफी खुल मिल गए हैं और अब तो एक दूसरे के साथ अच्छे से। नंदिनी नील का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी, तभी जिम ने उसकी बात काट कर कहा, हाँ मुझे अच्छे से दिख रहा है कि दोनों कितना अच्छे से रहते हैं। शिवी का नेचर तो पहले भी काफी पोलाइट था, लेकिन नील के बिहेवियर में अभी भी कोई चेंज नहीं आया
और कभी आ भी नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा शिवी, अब तक तुम चुप क्यों हो? तुम इन्हें बता क्यों नहीं देती कि मैं इन्हें तुम्हारे खाना खाने की जो भी फोटोज भेजता था वो सब फेक थी? हम तो ज्यादातर टाइम घर से बाहर बिताते थे, एक साथ एक घर में रहना तो दूर, हमें तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। नील शिवी की तरफ देखकर बोला। उसने इशारे से शिवी को उस सब को कंटिन्यू करने के लिए कहा। नील के अचानक बदले इस बर्ताव को देखकर शिवी ने सोचा, यहां आने से पहले तो बार बार एक ही रट लगा रखी थी, सब कुछ अच्छे से करना है, अब इसे क्या हो गया? वैसे भी मुझे क्या, मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करती हूँ। वैसे भी इस घर से भागने के बजाय वहां से भागना ज्यादा आसान रहेगा। शिवी ने नील का साथ देते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसने मुझे यहाँ आने से पहले डराया था कि सब कुछ अच्छा होने का दिखावा करना। शिवी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऐसा करने से क्या हो सकता है? नंदिनी ने उसे आंखें दिखाकर कहा। अब जो होना था सो हो गया, बहुत हो गई इसकी मनमानियाँ, इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी। अब से ये शिवी के साथ ही रहेगा, वो भी उसी घर में। मैं घर में CCTV लगवा दूंगा और उसका पूरा हैंडल मेरे पास रहेगा। अब 2400 घंटे मैं तुम पर नजर रखूंगा कि तुम इसका ख्याल रख रहे हो या नहीं। अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, जिम ने गुस्से में कहा। पिछली बार की तरह उन्होंने नील को फिर सज़ा सुना दी, लेकिन इस बार की सज़ा कुछ ज़्यादा ही सख्त थी। इसके बारे में खुद नील और शिवी ने भी नहीं सोचा था। CCTV? लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है अंकिल, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, शिवी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। जिम ने उसकी बात ना मानते हुए कहा, तुम इसकी साइड लेना बंद करो शिवी, ऑलरेडी नंदिनी काफ़ी है इसकी गलतियों को छुपाने के लिए। मैं भी देखता हूँ अब ये तुम्हें कैसे तंग करता है। एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए जिम, दोनों बच्चे हमारे ही हैं, वो हमारे साथ इस घर में रह भी लेंगे तो क्या? नंदिनी अपनी तरफ से जिम को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिम ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से चले गए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, कहकर नंदिनी भी उसके पीछे पीछे चली गई। नील की इस हरकत पर शिवी उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। CCTV लगने की वजह से उसका वहां से जाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था।